हिंदी सूफी काव्य और मलिक मोहम्मद जायसी, आलोक कुमार। भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण कालखंड है। हिंदी का भक्ति साहित्य भक्ति की उपज है। भक्ति धर्म साधना नहीं, भावना का विषय है। भक्ति काल के दो धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा यानी संत काव्य, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम है, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, रोमांसिक काव्य, कथा काव्य परंपरा आदि। सूफी काव्य भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ जुड़े। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गिना जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। सूफी सूफिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। एक अन्य मत से यह शब्द सफा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। सर्वाधिक मान्यता यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैत से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं, नफस इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया, कल्ब हृदय तथा रूह आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। जायसी का जीवन भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी मोहिदुद्दीन के शिष्य थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 1936 ईस्वी में यानी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। इस आधार पर जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी माना जा सकता है। जायसी अपने समय के शुद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन जाय ने, जिन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 449 हिजरी लिखा है। इस आधार पर जायसी का मृत्युकाल सन 1542 ईस्वी माना जा सकता है। यह कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। जायसी कहने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर ये बोले, मोहिका हंसेस की कोहरा ही। रचनाएं सूफी प्रेमाख्यान को सर्वप्रथम रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसका रचना काल 1389 ईस्वी बताया जाता है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन है, जिनकी रचना बेगावती है। यह 1503 ईस्वी में लिखी गई है, लेकिन सूफी प्रेमाख्यान काल परंपरा में सर्वप्रमुख है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर विस्तार से वर्णन है, जिसमें ईश्वर जीव सृष्टि प्रेम आदि पर विचार किए गए हैं। आखिरी कलाम, इस पुस्तक में कयामत का वर्णन है। पद्मावत, यह कृति कवि के यश का आधार है, जिसके पढ़ने से पता चलता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। इसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपण को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। लेकिन जायसी और कुतुबन ने हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने का प्रयास किया। पद्मावत प्रेम के पीर की व्यंजना करने वाला प्रमुख प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, इसकी भाषा अवधि है। कथा विस्तार। पद्मावत में प्रेम गाथा परस्पर परंपरा मिलती है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसकी कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंगल द्वीप देश की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में संसार में अकेली थी, इसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। उसने हीरामन नाम का सुआ तोता पाल रखा था जो बहुत चालाक था। एक दिन पद्मावती के वर न मिलने पर कुछ कह रहा था। राजा उसकी बातों को सुनकर दुखित हुए। राजा के डर से सुआ एक दिन उड़ गया। सुआ वन में एक बहेलिया के हाथों पकड़ा गया और चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया गया। ब्राह्मण से चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने 1 लाख में सुआ को खरीद लिया। एक दिन राजा के वन जाने पर उसकी रानी नागवती ने गर्भ में आकर सुआ से पूछा कि संसार में मेरे समान कोई सुंदरी है। इस पर सुआ हंसा और पद्मावती के बारे में कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने उसे मारने की आज्ञा दी, लेकिन चेरी ने राजा के डर से उसे नहीं मारा। राजा रतन सेन जब वन से लौटे तो सुआ के बिना व्याकुल हो गए। तब सुआ लाया गया और उसे सारी कथा सुनाई। पद्मावती के रूप की कथा सुनकर राजा मूर्छित हो गया और वियोग में व्याकुल होकर उसकी खोजी में योगी होकर निकल गया। सुआ की मदद से वह सिंगल द्वीप पहुंचकर वहां के राजा गंधर्व सेन से युद्ध करता है और उसे हरा कर वहां की रानी पद्मावती से विवाह करता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मावती के रूप की प्रशंसनीय अलाउद्दीन से करता है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। अलाउद्दीन छल से राज रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। घोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुँचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरुदिते राख क्यों हो जिस्तजू क्या है। पद्मावत अंततः मानुष प्रेम अर्थात मानवी प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन शुक शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयो भयंकुठी, ना हित का चार भरी मुठी। रचना के अंत में चार भरी मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो राख ही मिलती है। चार उठाए लीनी एक मुठी, दीन उड़ाए परिथमी झूठी। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। सूफी काव्यों की विशेषताएं। सूफी प्रेमाश्रय काव्य प्रेम की पीर के व्यंजना काव्य है। यहाँ प्रेम का परम सत्ता का प्रतीक है और प्रेमी साधक का। इस काव्यधारा की रचना प्रतीकात्मक है, मतलब यह है कि कथा लोक के साथ आध्यात्म की भी व्यंजना करती है। प्रेमाश्रय सूफी काव्य प्रबंधात्मक है, मुक्तक है। इस काव्य के प्राय सभी रचयिता मुसलमान हैं। इनकी भाषा अवधी है। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चार मित्रों, शाहवक्त की वंदना की गई है और कथा का विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में किया गया है। यह काव्य 2 चौपाई में निबद्ध है। इन काव्यों में विरह वर्णन और नक्षिक वर्णन उत्तम कोटि का है। इन कवियों में भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कहानियों को अपने जीवन का आधार बनाया है।